ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर जो आज लिए गए हैं, खासतौर से जो किसानों के लिए सरकार ने उपाय किए हैं और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम को एक तरह से नए रूप में लाने की कोशिश की गई है, और इसके साथ ही छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से। तो संतोष तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आर्थिक मामलों की समिति है, उसने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उन पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
तिवारी जी, जैसा कि पहले अगर हम बात करें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिससे कृषि क्षेत्र को काफी बड़ा लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा। तो कृपया हमारे श्रोताओं को जानकारी देने की कृपा करें कि किस तरह का ये फैसला है और इससे किस तरह से हमारे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आएगा।
ये दोनों फैसले अपने आप में बहुत अहम हैं, और जो कैबिनेट ने आज फैसला लिया है कि 10,700 करोड़ रुपए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वेज एंड मीन्स एडवांस होता है तो इक्विटी के तौर पर जो है वो लाएंगे, उससे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो काम है उसको मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। और थोड़ा सा मैं हमारे सुनने वालों के लिए ये बताना चाहूंगा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय कृषि क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका सालों से अदा करते आ रही है, और काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये है कि फूड प्रोक्योरमेंट, जो अनाज है उसका प्रोक्योरमेंट ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को मिलता है जो फूड प्रोक्योरमेंट होता है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, और जो जो अन्य अनाज है जिनका की प्रोक्योरमेंट होता है, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोक्योरमेंट के थ्रू ही किसानों तक पहुंचता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मजबूत एंटिटी बनकर रहे, क्योंकि या तो फूड सिक्योरिटी जो भारत देश की है उसकी बात करें, या फिर एक मात्रा में जो अनाज रखने की जरूरत है हमेशा, जिसको स्टोरेज कहते हैं, उसकी जरूरत हो, या फिर इस तरह के रिफॉर्म्स लाने की जरूरत हो जो कृषि क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट में भारत को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, उसके लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मजबूत होना जरूरी है। अब मैं आऊंगा कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया या कैबिनेट ने जो कदम उठाया है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कई तब्दीलियां हो रही हैं, जरूरत के मुताबिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं और उनमें चेंजेस आ रहे हैं ताकि स्टोरेज हो या प्रोक्योरमेंट हो, उस व्यवस्था को कृत्रिम बनाया जाए, मॉडर्न बनाया जाए, उसमें ये इक्विटी इन्फ्यूजन जो है वो मदद करेगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपने कामकाज के लिए अगर बाजार से कर्जा लेता है तो उस कर्जे पर इंटरेस्ट लगता है, और वो इंटरेस्ट जो है वो जैसी जरूरत हो अगर वैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेते रहे तो वो इंटरेस्ट का भार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर बढ़ता चला जाता है,
जी
और फाइनली वो भार जो है वो भारत सरकार पर ही आता है क्योंकि ये एंटिटी जो है वो भारत सरकार की है। तो ये इक्विटी इन्फ्यूजन दो तरीके से मदद करेगा। एक तो ये है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपना जो कर्जा है उस पर जो इंटरेस्ट है उसको कम कर पाएगा, और दूसरे जो मॉडर्नाइजेशन का काम जो चल रहा है और जो अपने ऑपरेशनल लेवल पर जो इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, उसमें ये पैसा जो है वो काफी मददगार साबित होगा।
तिवारी जी, एक बहुत दिनों से चल रहा है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो भंडारण क्षमता है या जो उसके भंडार हैं, उनमें जिस तरह से समय के साथ परिवर्तन आना चाहिए और जिस तरह से उनको और मजबूत बनाया जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो क्या अब सरकार ने जिस तरह का पूरा ये धन का आवंटन किया है उससे इस दिशा में भी काफी प्रगति होगी?
जाहिर तौर पे इस दिशा में मदद मिलेगी, और जो आज के समय में जो किसानों को मदद करने के लिए या स्टोरेज के लिए जो जरूरत है, और जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो स्टोरेज फैसिलिटीज है उसकी करनी की जानी चाहिए, वैसी करनी होनी चाहिए, वो करने में जाहिर तौर पर इस पैसे से मदद मिलेगी जरूर। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो कामकाज है उसमें अगर सशक्तता और मजबूती अगर आती है तो इससे एक तो सरकार पर जो भार अननेसेसरी पड़ता है कि कर्जा लेके करना पड़ता है वो कम होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, और किसानों के लिए भी अगर प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज जो है वो अगर इम्प्रूव होता है तो किसानों को भी मदद मिलेगी, टाइमली पेमेंट होगा और भी जो है प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो अगर इम्प्रूव होगा तो प्रोक्योरमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो सबसे बड़ी बात जो होगी, जैसा आपने कहा कि स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो बढ़ाने की, कृत्रिम करने की जरूरत है, सिर्फ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा करने की जरूरत है जिसमें कि आज की जरूरतों के मुताबिक ये स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो काम कर सके, उस तरह का बनाने की जरूरत है, उसमें भी मदद मिलेगा। और फूड सिक्योरिटी, जैसा मैंने मेंशन किया था, फूड सिक्योरिटी जो भारत देश की है वो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट अहम मुद्दा है। तो अगर FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर मजबूत एंटिटी है, और कहीं से भी जैसा इस पैसे से मजबूती आएगी उसमें वो मजबूती आती है, तो भारत में जो जरूरतें हैं अनाज लोगों में जिस तरह से ले जाने की, देने की, और जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसमें जाहिर तौर पर मदद मिलेगी और हेल्प होगा।
एक जो महत्वपूर्ण काम है FCI का, जिसका आपने जिक्र भी किया, कि जैसे सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जहां पर लोगों को खाद्यान्न देने की जरूरत है कि अगर कोई आपदा आती है ऐसी स्थिति में, या अन्य कोई भी ऐसी जरूरत होती है, तो ये जो काम है इसमें कहीं ना कहीं एक आर्थिक भार FCI के ऊपर पड़ता है कि अगर हम निशुल्क खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं तो ये जो भार है, तो अभी जो सरकार ने जो आउटले दिया है 10,700 करोड़ रुपए का, उससे भी इस काम में मदद मिलेगी।
प्राथमिक तौर पर भार जो कुछ भी स्कीम है उसका सरकार के बजट पर होता है प्राथमिक तौर पर, लेकिन उस काम को करने में जो ऑपरेशनल जरूरतें होती हैं वो जाहिर तौर पर FCI के थ्रू होती है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑपरेशनल लीड है, यानी गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने में, जहां स्टोरेज रखना है या प्रोक्योर करना है अनाज उस स्कीम को पूरा करने के लिए, उन सब सारी चीजों में अगर स्कोप बढ़ा है, एक्सपेंशन हुआ है, उसी तरह से FCI के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में भी बढ़ोतरी होने की जरूरत है, उस लिहाज से ये पैसा जो है वो काम आएगा। लेकिन प्राथमिक बोझ जो है वो कोई भी स्कीम का, उसमें जो खर्चा होता है वो सरकार का होता है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मजबूती से ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल जो उन स्कीम्स को पूरा करने के लिए जरूरतें हैं वो पूरा हो।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं इन फैसलों का और अधिक विवरण।
आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे फूड के प्रोक्योरमेंट सिस्टम में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अ वेरी बिग रोल। दी MSP का जो कंप्लीट सिस्टम है उसमें FCI प्लेज अ वेरी बिग रोल। इसमें आज फैसला लिया गया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेंथन किया जाएगा। अगर हम देखें, आप पिछले 10 वर्षों में फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और MSP भी कई गुने बढ़ी है, तो इसके कारण जो FCI का ऑपरेशन उसका स्केल बहुत बढ़ गया है। अगर जो FCI के पास स्टॉक्स रहते हैं एंड ऑफ द ईयर, इफ वी लुक एट द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स विच आर देयर एट द एंड ऑफ एनी ईयर, एवरेज 80,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक FCI में रहता है। इसका जो स्केल है वो स्केल बहुत बढ़ गया है, FCI के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए, इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी 10,700 करोड़ रुपीस का FCI में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो दैट मीन्स FCI विल बी एबल टू डू मच मोर देन व्हाट इट हैज बीन डूइंग।
अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में दी गई जानकारी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना, जिसका आज मंजूरी दी है, जिसको आज कैबिनेट ने इसको PM विद्यालक्ष्मी योजना, और ये एक वित्तीय समर्थन है, वित्तीय सहयोग है उन विद्यार्थियों के लिए जो मेरिटोरियस हैं, जो प्रतिभाशाली हैं और जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं अपनी पढ़ाई में। हालांकि पहले से ये योजना है, जो हम कहें अगर कि बैंक से जो एजुकेशनल लोन, शिक्षा के लिए लोन दिया जाता है, वो पहले से मौजूद है, लेकिन संभवतः सरकार जिस तरह से चाहती है कि विद्यार्थियों को इस तरह की योजनाओं का लाभ मिले, बैंक शायद वैसा नहीं दे पाते। तो अब जो सरकार योजना लेके आई है PM विद्यालक्ष्मी, ये किस तरह से जो एजुकेशन लोन है या जो विद्यार्थियों की सहायता है, इस पूरे क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन लाएगी ये योजना?
अगर ये योजना कामयाब होती है, और कामयाब होनी चाहिए जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, इसको जिस तरह से बनाया गया है, जितनी दिक्कतें आज एजुकेशन लोन लेने में छात्रों को आती है या किसी को आती है, जो ये डिसीजन है और PM विद्यालक्ष्मी स्कीम है उसमें उन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन दिक्कतों को हटाने की पूरी कोशिश की गई है। बैंकों की तरफ से भी, क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन देते हो और वो वापस नहीं आता है तो बैंकों के लिए दिक्कत की बात है, और छात्रों की तरफ से भी लोन लेना इतना डिफिकल्ट है तो क्या होना चाहिए, बैंकों को क्या सहूलियत मिलनी चाहिए और छात्रों की साइड से क्या सहूलियत मिलनी चाहिए कि लोन लेना आसान हो जाए। क्योंकि देखिए, आज भारत में तरक्की का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को, सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवाओं को स्किलफुल बनाकर ही तय किया जा सकता है, और हायर एजुकेशन कितनी आसानी से आपको मिल सकता है और उसमें अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस है, अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्टेड, तो वो उस चीज को पूरा करने में कामयाब होगा, जिसके चलते कि आज कई बार पैसे के अभाव में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं वो या तो लोली स्किल्ड काम या अनस्किल्ड काम करने को मजबूर होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो दिक्कतें आती थी वो सब पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम ने खत्म करने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे इसमें जो मैं देख रहा हूँ, हर साल 22 लाख जो छात्र हैं उनको 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन लोन लेने में मदद करने में ये स्कीम जो है वो कामयाब होगी। अब देखिए, किन किन चीजों में एजुकेशन लोन लेने में या पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने में दिक्कत आती है। आपको कोलेट्रल जो है वो जो देना पड़ता है कि आप लोन ले रहे हो तो आपके पास क्या ऐसी चीजें संपत्ति है जिसका कि आप कोलेट्रल दोगे बैंक को, वो देना पड़ता है, वो बड़ी दिक्कत है। गारंटर चाहिए होता है, गारंटर चाहते हैं बैंक, क्योंकि उनको भी अपना इंश्योर करना है कि हमें वापस हो। एक प्रक्रिया जो है वो फॉर्म इतना भरना पड़ता है और इतने सारे उसमें आपको देने पड़ते हैं डिटेल्स, जो कि अपने आप में दिक्कत की चीज है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम ने क्या किया, इसने पूरी की पूरी स्कीम को कोलेट्रल फ्री कर दिया, यानी कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है, गारंटर फ्री है एजुकेशन को, और ये आप एक्सेस कर पाएंगे एकदम से सामान्य सिंपल ट्रांसपेरेंट में, स्टूडेंट फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, इंटायर डिजिटल एप्लीकेशन प्रोसेस। आज तो डिजिटली आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, गांव देहात कहीं भी आप चले जाइए, आज आप जाकर डिजिटली एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आधार ने सब कुछ इतना सिंपल कर दिया और हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन ने भारत देश के तो हर चीज को इतना आसान कर दिया है। तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया की तो बात ही, तो उसका इस्तेमाल करते हुए इसको बिल्कुल डिजिटल एप्लीकेशन बनाकर सिंपल स्टूडेंट फ्रेंडली बना दिया गया। तो ये तीन दिक्कतें जो है मेजर दिक्कतें होती थी, इसको पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में एड्रेस कर दिया गया। 7.5 लाख तक के लोन पर 75% जो है क्रेडिट गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। अब बैंकों को इससे बड़ी सुविधा सहूलियत या सपोर्ट क्या चाहिए।
तिवारी जी, एक चीज मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, इसमें जो सबसे खास बात मुझे दिखाई दी कि एक यूनिफाइड पोर्टल बना दिया है। तो पहले लोग लोन लेने के लिए बैंकों के पास जाते थे, अब जैसा आपने कहा कि डिजिटल एप्लीकेशन है और वो भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, तो उसके बाद फिर बैंकों को भी आसानी है और छात्रों को भी आसानी होगी लोन लेने में।
एब्सोल्युटली, वही तो सिंपल और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है। जैसे आप आजकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप अप्लाई करते हो, हर चीज, हर पब्लिक सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इतना सिंपल कर दिया है और कितने खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ एजुकेशन लोन में सरकार ने यूज करने की कोशिश की है, इस्तेमाल करने की कोशिश की है पीएम विद्या लक्ष्मी। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर सेंट्रलाइज्ड है, आप डिजिटली एप्लीकेशन डालिए, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डिटेल्स देने हैं या बैंकों के पास जाना है, कागज भरना है, सब कुछ करना है, वो सारी चीजें खत्म हो गई। बैंकों के लिए 75% जो है वो क्रेडिट गारंटी है, अब लोन्स अप टू 7.5 लाख, तो 7.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए 75% क्रेडिट गारंटी है बैंकों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब अगर छात्रों की बात करें तो 8 लाख तक अगर एनुअल यानी सालाना फैमिली इनकम अगर है तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है यानी इंटरेस्ट बिल्कुल फुली फ्री इंटरेस्ट सबवेंशन ऑल स्टूडेंट्स को जिनका की सालाना इनकम है 4.5 लाख रुपए से लग तक है 4.5 लाख सालाना इनकम। इन सारी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि सरकार ने जो भी स्कीम बनाया है तो बहुत मेटिकुलस स्टडी किया है कि विभिन्न तबके के जो छात्र हैं जो मेरिटोरियस हैं और जो कि मार्क्स अच्छे लाने के बावजूद या काफी स्कोप अच्छा करने का होने के बावजूद अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। तो किस तरह से एक स्कीम ऐसा लाया जाए जिसमें कि बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये सपोर्ट दिया जाए और छात्रों को ये विंडो दिया जाए कि बिल्कुल इजी वे में अगर आपको हायर एजुकेशन करना है अच्छे इंस्टीट्यूशंस में और आप अगर मेरिटोरियस हो तो आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा, वो तकलीफ या वो दिक्कत की बात आपकी नहीं रह जाएगी। ये स्कीम अगर सेंटर स्टेट्स हर जगह ना, ये अगर स्कीम कामयाब रहे और अगर सही तरीके से इस पे काम हो तो जो स्किलिंग गैप है इंडिया में, और स्किलिंग गैप मतलब कि वैसा काम, वैसे शिक्षा, वैसे हायर एजुकेशन जो कि आपको इम्प्लॉयबल यानी नौकरी रोजगार युक्त बनाती है, वो उस जगह पे ले जाने में इतनी मदद मिलेगी इसमें कि आप सोच नहीं सकते।
तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विशेषज्ञ संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना।